शांति। राजयोग की प्रयोगशाला में आज 28th डे हमने पूरा किया। बहुत अच्छा अच्छा अनुभव किए, बहुत ही प्रयोग किया, बहुत ही हमने लाभ उठाया। आज की जो प्रयोगशाला है साकार मुरली, उससे पहले प्रयोगशाला में जाने से पहले कुछ तैयारी करनी होती है, तैयार होके जाना होता है। पहले के समय था कि उतना हम ध्यान नहीं देते थे। जब हम ब्लड देने के लिए जाते थे, डॉक्टर से मिलने जाते थे, एक्सरे करवाने जाते थे, सीटी स्कैन करवाने जाते थे, तो करने वाला भी उतना वो अपने सेफ्टी नहीं बरतते थे और कराने वाला भी सेफ्टी नहीं बरतते थे। लेकिन वर्तमान समय COVID-19 की महामारी की समय चल रही है, ऐसे महामारी के समय में मरीज को तो डॉक्टर से बचना ही होता है, हॉस्पिटल से बचना ही होता है, लेकिन डॉक्टर को भी मरीज से, नर्स को भी मरीज से, या तो सैंपल कलेक्ट करने वालों को भी मरीज से बचना होता है। तो उससे पहले प्रयोगशाला में जाने से पहले या तो प्रयोगशाला में पहुंच के कुछ तैयारी करते हैं, कुछ पहनते हैं, कुछ लगाते हैं जो हमारी सुरक्षा हो। तो हमने देखा कि जो भी कोरोना काल में कोविड वार्ड में सेवा देते हैं, चाहे जो ज़्यादा पब्लिक से कनेक्टेड रहते, जो नज़दीक रहते मरीजों से, पेशेंट से, वो खास करके PPE किट पहनते हैं। PPE किट माना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट। तो उसमें क्या होता है, शायद आप सब जानते होंगे, हम दोहरा देते हैं इसको। कैप होता है, मास्क होते, ग्लव्स होते, चश्मा होते, फेस शील्ड होते, और कवर ऑल सूट माना कुर्ता पैजामा जैसे पूरा नीचे से ऊपर तक होते हैं, और शूज कवर होता है। तो एक बार आप सब देख लीजिए, ये तो PPE किट नहीं है, ये HIV किट है ये, लेकिन समझने के लिए सिर्फ लाए हैं। इसको कवर ऑल सूट बोलते हैं, ये पूरा नीचे से ऊपर पहनने वाला है, और जरूरत पड़ेगी तो पहन लेंगे। ये चश्मा तो आप सब जानते होंगे, मास्क होता है N95, लेकिन इसमें सर्जिकल मास्क दिया है। ग्लव्स होते हैं दो पैर, इसमें एक पैर दिया है। ये है आपको कैप, ये है शूज कवर, और ये है फेस शील्ड, ये है फेस शील्ड। तो इस राजयोग की प्रयोगशाला में, चाहे राजयोगी जीवन में जीने के लिए हर समय हम प्रयोगशाला में ही रहते हैं। ये जीवन हमारा ऐसा है कि हमेशा हम प्रयोगशाला में ही रहते हैं। जब ये किट पहनते हैं, पीपीई किट पहनते हैं, तो कितना भी महामारी वाली जगह हो, कितनी भी पेशेंट के बीच में हो, लेकिन फिर भी पीपीई किट के अंदर में काम करने वाले थे स्वास्थ्यकर्मी, बाहर पेशेंट, बीच में इन्फेक्शन। लेकिन वो इन्फेक्शन पीपीई किट पहनने के बाद में इन्फेक्ट नहीं करते हैं, उससे बचे रहते हैं और मरीज को ट्रीट करते हैं, इलाज करते हैं और उनको जीवदान देते हैं। तो हमें भी इस जीवन में, ब्राह्मण जीवन में, प्रयोगशाला में प्रयोग करना है तो हमें भी पीपीई किट पहननी पड़ेगी। तो हमें कौन सी पीपीई किट पहननी पड़ेगी? डीपीपीई किट पहननी पड़ेगी, डिवाइन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट। तो हमें भी कैप पहनना होगा, हमें भी गॉगल लगाना होगा, ग्लव्स पहननी होगी, N95 मास्क पहनना होगा, कवरऑल सूट पहनना होगा, शूज कवर पहनना होगा। तो कौन सा कैप हम पहनेंगे? परमात्म वरदान रूपी छत्र छाया का कैप पहनेंगे। उससे पहले, सबसे पहले जो पीपीई किट पहनते हैं, वो जो हॉस्पिटल का ड्रेस होता है वो ड्रेस पहनते हैं, उसके बाद में हाथ को साफ करते हैं, उसके बाद सैनिटाइज करते हैं और पहले ग्लव्स पहनते हैं। तो हम भी ड्रेस पहन लेंगे, कौन सा? ब्राह्मण जीवन में जो हमें ड्रेस मिला हो, ड्रेस पहन के, ड्रेस पहन, फ्रेशता ड्रेस होगा तो पीपीई किट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमें ब्राह्मण जीवन में, हमें दूसरों को बचाना है, दूसरों को ठीक करना है, दूसरों को मदद करना है, दूसरों की सेवा करनी है, तो डिवाइन पीपीई किट पहननी होगी। तो सबसे पहले हम ड्रेस पहनेंगे, हाथ सफाई करेंगे, उसके बाद में ग्लव्स पहनेंगे। ग्लव्स कौन सा पहनेंगे? दूसरों को मदद करने वाला ग्लव्स, दूसरों को सेवा करने वाली मदद, दूसरों को सुख देने वाली ग्लव्स पहनेंगे। सुख देते देते अगर हम ग्लव्स नहीं पहना, मरीज को ट्रीट करना शुरू कर दिया, तो वायरस हमारे अंदर आ जाएगी। इसीलिए हमें ग्लव्स पहनना जरूरी है, मर्यादाओं की ग्लव्स पहनना है। ग्लव्स पहनने के बाद में कैप पहनना है। कौन सा कैप पहनेंगे? परमात्म वरदानों की हस्त का कैप पहनेंगे। कोई भी वायरस हमारे सिर में नहीं लगेगा। अगर हम कैप नहीं पहना, ऐसे ही मरीज के पास चले गए, तो वायरस जो है, कोविड वायरस को ड्रोपलेट वायरस कहते हैं, लेकिन बिकारों की वायरस को एयरबॉर्न कहते हैं, वो हवा में फैला हुआ है, इसलिए बहुत जरूरी है। एयरबॉर्न हवा में फैला हुआ, हवा में ही है, वातावरण में ही है, इसलिए बहुत जरूरी है कैप पहनना। नहीं तो अगर हम कैप, हमारे सिर में बाल है और हम वायरस बाल में अगर हाथ लगा लिया, हाथ आंख में मुंह में गई, तो फिर हम बीमार हो सकते हैं। N95 मास्क पहननी है, सिंपल मास्क है, सर्जिकल मास्क है और कपड़े के मास्क से काम नहीं चलेगी। डिवाइन N95, उससे डिवाइन N95 में क्या होता है कि हवा जो है ना छन के हमारे अंदर जाता है, पहनने में मुश्किल होता है लेकिन छन के अंदर जाते हैं, तो हमें वायरस अटैक नहीं करते हैं। तो वही डिवाइन N95 मास्क पहनेंगे तो हमारे मुंह से किसी के लिए दुखदायी वचन नहीं निकलेगा और हम गंदे चीज नहीं खाएंगे जो हमारे नुकसान के है, जो हमारे शरीर को भी नुकसान करे, मन को भी नुकसान करे, जो हमारे स्थिति को बिगाड़े, जो अमृत वेला को डिस्टर्ब करे, वो मास्क हम नहीं पहनेंगे। तो अगर N95 मास्क पहनते हैं तो हम बुरे खाने से भी बच जाते हैं, बुरे बोलने से भी बच जाते हैं और अच्छे बोल ही हमारे मुंह से निकलेंगे। तीसरा है गॉगल कौन सा पहनेंगे, विशेषताएं देखने की, गुण देखने की। अगर देखना ही है तो फरिश्ता की देह देखने की, देह नहीं देखने की, फरिश्ता की देह देखने की, भ्रिकुटी में देखने की, रूहानी गॉगल पहनना है अपने को। उसके बाद में कवर और सूट कौन सा पहनेंगे, कवर और सूट हमें वो पहनना है। हमने रामायण में लॉकडाउन में देखा कि शत्रुघ्न इतना धनुर्धर भी लव और कुश को नहीं मार सका, भरत भी नहीं मार सका, लक्ष्मण भी नहीं मार सका। क्यों? क्योंकि उन्होंने औरत निर्माण कर लिया था, सेफ्टी कवच। तो हमें भी अपने जहां भी हम निकलते हैं, जहां भी सेवा क्षेत्र में जाते, पहले हमें क्या करना है, कवर और सूट पहनना है, अर्थात औरा निर्माण करना है। उसके बाद में शूज कवर कौन सा पहनेंगे, कदम कदम में श्रीमत, हर कदम में उमंग और उत्साह बढ़ा हुआ हो, सदा जोश जागृत, सतत जागरण की अवस्था ऐसी हो हमारी। कवर शूज ठंडा ठाकुर नहीं, ढीला ढाला नहीं, एकदम चुस्त और फुर्त, कदम में पदम की कमाई करने वाले और कराने वाली कवर और सूट हो। और फेस शील्ड कौन सा पहनेंगे, अगर फेस शील्ड नहीं पहन लिया, नहीं पहने तो भी वायरस हमें अटैक कर सकती है, तो हमें कौन सा फेस शील्ड पहनना है, रूहानियत का फेस शील्ड पहनना है, अलौकिकता का फेस शील्ड पहनना है। साया, सारा माया कहाँ से आती, इतने ही दूर में आती है। बूढ़ा है, जवान है, लड़का है, लड़की है, अच्छी है, बुरी है, अच्छा है, बूढ़ा है, कहाँ से दिखाई देता है, इतने में ही दिखाई देता है। इसको ही दिव्य बना देना है, इसी को ही अलौकिक बना देना है, इसी को, इसमें ही रूहानियत को भर देना है। जो भी देखे विशेषता को देखे, जो भी देखे बाबा की बच्ची समझ के देखे, जो भी देखे विशेष आत्मा समझ के देखे, देह को नहीं देखे। उसके बाद में दोबारा ग्लव्स पहनना होता है, क्योंकि फिर भी चांस है अटैक करने का, फिर ग्लव्स पहन लेते हैं, फिर जाके सेवा में जाते हैं। अब हम ब्राह्मण आत्माएं DPPE किट तो पहन लिए हैं, अभी हम चलते हैं साकार मुरली के प्रयोगशाला में। आज बाबा ने हमें बताया रूहानी सेवा करनी है तो पावन बनना है, और देही अभिमानी ही रूहानी यात्रा कर सकती है और करा सकती है। पावन कौन सा बनना है, एक तो तन की पावन, मन की पावन, धन की पावन, सबै श्वास संकल्प सब पावन होना चाहिए। हमारा हमारा संबंध भी पावन होना चाहिए, तभी हम रूहानी सेवा के लायक बन सकते हैं, तभी हम विश्व की कल्याण कर सकते हैं, तभी हम बाबाओं की आशा को पूरा कर सकते हैं, तभी जो तृप्ति हुई आत्माएं जो हमें आस लगा के पुकार रहे उनकी पुकार को सुन सकते हैं, तभी समय को हम समीप ला सकते हैं। इसीलिए हमें पावन बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें रूहानी सेवा करनी है। बाबा ने बताया है कि इस कमाई में दिवाला नहीं निकल सकता है। ज्ञान सुनना, ज्ञान सुनाना, योग करना, योग कराना, श्रीमत पर चलना, श्रीमत पर चलाना, सेवा करना, सेवा कराना, यही है सच्ची कमाई जो सच्चा बाबा सिखाते हैं। हमको याद आता है कि रामायण में जब श्री राम जी पूरा ग्रुप के साथ आ गए अयोध्या जी में, और जब उनका राज्याभिषेक हुआ, और उसके बाद में खुश होकर सीता जी राम जी हनुमान जी को एक हार दिए, जो हीरा का हार थे शायद, जो भी थे मूल्यवान थे। हीरा का हार देते ही हीरा को हार को हनुमान जी ने दांत से कुतर कुतर के देखने लगा कि इसके अंदर क्या है। सीता कहती है बंदर का बंदर ही रह गया, क्योंकि इतना अमूल्य हार दिया और ये कुतर रहा है। बोला कि ऐसे तुम क्यों कर रहे हो। सीता माता को हनुमान जी कहते हैं कि इसमें मैं देख रहा हूं कि मेरी माँ सीता और मेरी प्रभु श्री राम जी है कि नहीं। उसी तरह जो भी हम सेवा करते हैं कराते हैं, जो भी ज्ञान सुनते हैं सुनाते हैं, योग करते हैं कराते हैं, सेवा करते हैं कराते हैं, श्रीमत पर चलते हैं चलाते हैं, जो भी करते हैं उसमें देखे बाबा समाया हुआ है कि नहीं। अगर बाबा समाया हुआ नहीं है वो कल्याणकारी नहीं है। तो हम आज के प्रयोगशाला में देखेंगे, आज की दिनचर्या में देखेंगे, जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हम करा रहे हैं, जो हमारे में संकल्प चल रहा है, वो संकल्प बाबा के जो सोचते उस हिसाब से है कि नहीं। आगे बाबा ने बताया, भक्ति मार्ग में भावनाएं बहुत होती है। रामायण आदि की कहानियां सुनते हैं और बड़ी प्रेम से सुनते हैं और सुनते सुनते रोने लगते हैं, और उसमें सुनते हैं हमारे भगवान की माँ भगवती सीता, रावण डाकू ने चोरी कर लिया। भक्ति मार्ग में चहचटा बहुत है, भक्ति मार्ग में चहचटा बहुत है। कितने देवताओं को पूजा करते हैं, ठाकुर जी को पूजा करते हैं, हार चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं। ठाकुर के जो हार और माला चढ़ता है, जो भी ठाकुर के लिए चढ़ाते हैं, वो किसकी प्रॉपर्टी होती, पुजारी की या ट्रस्टी की। हम बाबा के बच्चे, यहाँ पे उल्टा है। जो भी हम सेवा करते हैं कराते हैं, जो भी बाबा के यज्ञ में देते हैं, जहां भी बाबा ने हमें निमित्त में रखा है, वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रभु की है, भगवान की है, यज्ञ की है, हमको सेवा के लिए दिया गया है। जब भी हम कहीं जाते हैं, कहीं से कुछ लेते हैं, हमें पूछ के लेना चाहिए निमित्तात्मा से। अगर हम स्वयं निमित्तात्मा है वहां का, तो हमें बाबा से पूछना है, बाबा ये हमारे यूज के लिए चाहिए, हम ले सकते हैं कि नहीं। ऐसे नहीं कि हम मालिक हो गए, मालिक यहां नहीं होता है, सब निमित्तात्मा है। तो ये भी हमें देखना है कि कहां कहां हमारी बुद्धि जाती कि हमारा है। अरे हम तो अपना शरीर भी बाबा को दे दिए, हमारा हुआ कहां से, ये प्रभु की है, भगवान की है, हमारा नहीं है। और प्रभु की भगवान की समझ के ही हमें चलना है, ईश्वरीय कार्य में लगाना है। आगे बाबा ने बताया है मुरली में, ज्ञान मार्ग में भी बहुत ज्यादा ग्रहचारी बैठती है। जब ग्रहचारी बैठती है मुरझा जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। जब बेहोश हो जाते हैं तो ज्ञान की संजीवनी बूटी देना होता है। ज्ञान की संजीवनी बूटी क्या है? जब लक्ष्मण जी को रामायण में दिखाते, जब लक्ष्मण जी को बाण लगा और बाण लगने के बाद में विभीषण जी से पूछा गया कि इसका क्या करे, राम जी पूछते विभीषण जी से क्या करे, राम जी कहते हैं विभीषण जी को, विभीषण जी कहते राम जी को, इनका इलाज तो जो लंका के जो राजवैद्य है वही कर सकते हैं। और हनुमान जी जाते हैं और उनका कुटिया सहित उठा के ले आते हैं और उनसे पूछते हैं इलाज, बात लंबी है उसको छोटा करते हैं, लाते हैं लास्ट में कहते हैं कि संजीवनी बूटी अगर लाते हैं तभी इनका मूर्छित जो है ना ठीक हो सकता है। और हनुमान जी जब जाते हैं लाने के लिए, बीच में राक्षसनी मिलती है, उसके बाद में रावण नहीं कोई दूत को भेजता है कि जो राम राम जपता रहता है उनको कंफ्यूज करने के लिए, मन को भटकाने के लिए, कालनेमी। उसके बाद में आगे जाता है तो बोलता है कि एक ही पेड़ में ऐसा कुछ है जहाँ पे वो संजीवनी बूटी है, लेकिन पूरा पर्वत ही संजीवनी बूटी जैसे देखने लगता है। वो बेचारा कन्फ्यूज हो जाता है और लास्ट में क्या करते, पूरा पहाड़ को ही उठा के ले आते, क्योंकि लाना तो ज़रूरी है और वो भी समय से पहले लाना है, नहीं तो ठीक नहीं होगा। उसी तरह इस ज्ञान मार्ग में जब मूर्छाएं हमें हो तो हमें 200 नाखून का जोर लगा के उस मूर्छाएं से, उस उदास से, उस बेहोशी से होश में आना है। जैसे हनुमान जी ने पूरा जोर लगा के सहारा ले आए, वैसे हमें भी जोर लगा के, अगर कोई है तो उनको भी हम मदद कर सकते हैं, लेकिन श्रीमद के अंदर में रह के। आगे बाबा ने बताया है कि तुम श्रीमद परमान आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हो। फिर बाबा को याद आ गया कि श्रीनाथ द्वारे बाबा गए थे, श्रीनाथ द्वारे गए तो बाबा को वहाँ की गौवें बहुत अच्छी लगी। बाबा कहते कि यहाँ की देखो श्रीनाथ द्वारे की गौवें कितनी अच्छी है, और यहाँ की गौवें सावरी होती है, यहाँ की हर चीज़ सावरी है, और सत्यों की गौवें बहुत अच्छी होगी। आगे बाबा ने बताया, अभी आगे भी है पॉइंट, वो माली भी आने वाला है, फिर ये गुजर भी है। आगे बाबा ने बताया है कि तुम्हारा जीवन अमूल्य बना है, तुम्हारा जीवन अमूल्य बना है बाप के बहादुरी से। कितना ना उस बाप की धन्यवाद करे, कितना ना शुक्रिया करे, कितना ना उसकी उपकार, उनके उपकार को हम कैसे उनके उपकार को चुकाए जो हमारे जीवन को मूल्यवान बनाया। कहाँ हम भटक रहे थे, क्या कर रहे थे, कैसे थे हम, कैसे बाबा ने हमें बना दिया ऐसे बाबा को। तो हमारे भाई साहब जगदीश भाई साहब कहते कि साष्टांग दंडवत भी करे तो कम है। तीन उपकार को हम कैसे, तो आज हम बाबा के उपकार को, बाबा ने जो हमारे जीवन को अमूल्य बनाया, बाबा ने जो हमारे जीवन में विशेषताएं भरी, बाबा ने जो हमें श्रेष्ठ बनाया, कौड़ी से हीरा बनाया, पतित से पावन बना रहे हैं, तो उनके उपकार को लिखें कि क्या क्या हमारे ऊपर बाबा ने उपकार किया, और बाबा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं वो भी लिखें। फिर आगे की मुरली में है कि सत्युग में जो गौवे अच्छी होगी और गौवे के जो गोबर होगा वो भी ताकतवर होगा। फिर वहाँ पे मालिक कैसे फल कट कर लाते होंगे ये बताए हैं। फिर ये फल जो है, बगीचा जो है, सुविरस जो है, वो सूक्ष्म बतन में नहीं होता है। सत्युग में सत्युग और सूक्ष्म बतन मना बाबा ने मूल बतन में और सूक्ष्म बतन में सत्युग नहीं होता है, वैकुंठ नहीं होता है, इसी भूमि पे होता है बाबा ने बताया। वहाँ तो सिर्फ साक्षात्कार होता है। जो गौ चराने वाला है तो उसको गुजर बोलते हैं और वो अपने को कृष्ण की वंशावली समझते हैं। वास्तव में कृष्ण की वंशावली नहीं है, वो कृष्ण की राजधानी के हैं। साहूकार लोगों के पास भी अच्छे अच्छे गौवे होंगे, उनको चराने मना संभालने वाला भी होगा, ग्वाले होंगे, उनको गुजर कहते हैं, बाबा ने ये बताया। तो अभी हम ये देख सकते हैं, हमको तो तीन नाम याद है कि सत्युग में एक तो गौ को संभालने वाले को गुजर कहते हैं, दासी को कांता कहते हैं, दांत को साफ करने वाले को दंत चिलकारी कहते हैं, और आगे क्या कहते हैं वो हम लिस्ट निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। हाँ, बाल को ठीक करने वालों को कंघी को केश चिलकारी कहते हैं। तो ऐसे हम आज के दिन ढूंढ सकते हैं कि सत्युग में जो चीजें होंगी उनका क्या क्या नाम होगा, और सत्युग का सैर भी कर सकते, सत्युग की क्या क्या चीज होगी उसके भी हम लिस्ट निकाल सकते हैं आज के उसमें। आगे बाबा ने बताया है मुरली में कि आप रूहानी सेवा के लायक बन रहे हो, जिस्मानी सोशल वर्कर देह अभिमान में होते हैं, नॉलेजफुल शिव बाबा है, और शिव बाबा के ऊपर कोई अग चढ़ाते, कोई दूर चढ़ाते, कोई क्या चढ़ाते हैं। ऊंचे ते ऊंट शिव बाबा का पाठ है, और उसके बाद में ब्रह्मा सरस्वती की पाठ है। बाबा ने बताया है मुरली में कि बच्चे सतयुग जो है माया के तूफान योग में ही आते हैं, योग में ही हमें मजबूत बनना है, योग ही कमाई ऐसी है, यही कमाई याद आने वाली है। जितना याद में रहेंगे तो आगे क्या होने वाला है वो अनुभव होता है, आगे से पता चल जाता है। तो एक तो याद को हमें बढ़ाना है, हर बात में हमें याद को जोड़ना है, हर बात में याद को जोड़ते जाएंगे तो याद मजबूत होती जाएगी, और याद मजबूत होगी तो यही कमाई हमें आगे याद आने वाला है, आगे मदद करने वाला है, काम आने वाली है। और बाबा साथ रहेंगे हमारे, हम बाबा के साथ होना नहीं पड़ेगा, बाबा ही हमारे साथ रहेंगे। बाबा ने आगे बताया है कि माया की छम छम बहुत है, माया की रिमझिम बहुत है, माया बड़ी रौनकदार है। इस माया की रौनकदार को बाबा की याद से, योग बल से और अपनी ज्ञान की बुद्धि से समझना है इसको। जो प्रसन्नचित रहते हैं उन्हें प्रश्न जीवन में नहीं उठता है, ये बात बाबा ने मुरली में बताया है। अभी हम थोड़े देर थोड़ा सा कमेंट्री करेंगे, इस कमेंट्री में हम ऐसे कीजिए वैसे कीजिए नहीं, हम कर रहे हैं इसको समझना है। उससे पहले एक बात रह गई थी कि कवर ये जो पीपी किट पहनते हैं तो पहनने का तो इजी माध्यम होता है, निकालते समय बहुत सावधानी से निकालना होता है, बहुत सावधानी से। पहनने वालों को डॉनिंग बोलते हैं, निकालने वाले को डॉफिंग बोलते हैं। तो निकालते समय हर बार सैनिटाइज करना होता है, कहीं टच ना हो, नहीं तो इन्फेक्शन हमें लगने का चांस रहता है। हम किसी का मदद भी ले सकते हैं, या तो हम अलग अलग दो कुर्सी होती है, एक तो क्लीन कुर्सी, एक अलग कुर्सी, उस कुर्सी पर बैठ के हम वो कवर सूट को निकालना, ग्लव्स निकालना, फेस शील्ड निकालना, मास्क निकालना, शूज कवर निकालना, वो अलग अलग है, उसको डिस्कार्ड करते हैं अलग अलग, नहीं वो रखते हैं फिर जाता है उसमें डिस्कार्ड होने के लिए। तो अभी हम कमेंट्री करेंगे, उस कमेंट्री में हम कर रहे हैं, हमें करा नहीं रहे हैं, ऐसे समझ के करने। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अचानक ही मुझे आत्मा का रस्सी प्यारे बाबा ने ऊपर खींच लिया, और मैं आत्मा बाबा के पास पहुंच गई सूक्ष्म तन में। हमसे पूछ रहे हैं मीठे बच्चे, बाबा ने आपको ऊपर क्यों खींचा रस्सी पता है आपको? मैं कह रहा हूं नहीं बाबा, बाबा कह रहे हैं बच्चे वर्तमान समय बहुत नाजुक समय चल रहा है, अच्छे अच्छे बच्चों के ऊपर भी
आचार्य बैठ जाते हैं। माया की छमछम, माया की रिमझिम, माया की रौनक में उलझ जाते हैं। बाबा को भूल जाते हैं। लक्ष्य भूल जाते हैं। प्राप्ति भूल जाते हैं। इसीलिए बच्चे नॉलेज भूल बाप को, सदा साथ रखना। जैसे भक्त लोग शिवलिंग के ऊपर अग चढ़ाते हैं, वैसे ही आप अपनी कमजोरी को चढ़ाना। मैं कह रहा हूं जी बाबा, बाबा कह रहे जितना याद में रहेंगे उतना स्थिति मजबूत होती रहेगी, आगे होने वाली परिस्थिति का मालूम पड़ेगा। यही कमाई साथ जाने वाली है। बाबा मेरे सिर पर हाथ रख दिए हैं और मैं गर्दन ऊपर करके बाबा की ओर देख रहा हूं। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, मैं बाबा से दृष्टि ले रहा हूं। बाबा करे यही कमाई काम आने वाली है। जितना याद में रहेंगे उतना ज्ञान की धारणा होगी। मैं कह रहा हूं जी बाबा, बाबा मुझे देख रहे हैं, देख रहा हूं। बाबा कह रहे बच्चे याद ही मुख्य है, ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं। मैं कह रहा हूं जी बाबा, बाबा कह रहे बच्चे बाबा की याद में रहोगे, बाबा के साथ रहोगे तो सदा जीवन में प्रसन्नता रहेगी, सदा खुशहाली रहेगी, सदा आगे बढ़ते रहोगे। मैं कह रहा हूं जी बाबा, जीवन के प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, जीवन में कोई प्रश्न ना होगा। मैं कह रहा हूं जी बाबा, बाबा के हाथ मेरे सिर पर है, बाबा मुझे शक्ति दे रहे हैं। बाबा कह रहे बच्चे तुम्हारे जीवन अमूल्य बनाया है, इस उपकार को तुम कभी नहीं भूलना। मैं कह रहा हूं जी बाबा, और बाबा के वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखे हैं और बाबा मेरी दृष्टि देते देते नीचे जाने की इशारा कर रहे हैं और मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर समेत वापस अपने शरीर में आ गया हूं। ओम शांति।